हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। निमानी हाउस में अनाही और वेहा साथ मिलकर टेबल पर खाना लगा रही थी। रूहान काफी देर से बिल्कुल परछाई की तरह अनाही के आगे पीछे घूम रहा था, जो अनाही ने नोटिस कर लिया था। पर सब लोगों की मौजूदगी की वजह से वो उसे कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। खाना लगने के बाद उसने गहरी सांस ली और फिर रूहान का हाथ पकड़कर उसे किचन में ले गई। राधिका उन्हें आंखें छोटी करके देख रही थी। फिर उसने अपने पास बैठे रितेश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ये छोटी बहू तो बहुत ही ज्यादा बेशर्म है, न वक्त देखती है न माहौल, और ये रूहान भी इसके पीछे पागल हो गया है। सच में मेरी आंखों में चुभने लगी है ये लड़की। रितेश ने उसका हाथ अपने कंधे से हटाते हुए कहा, उस लड़की को छोड़ो, तुम अनंत की आने वाली बीवी के बारे में सोचो। राधिका ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, मैं तो इन दो बहुओं से परेशान हूँ, तीसरी भी आ गई को क्या होगा इस घर का। वैसे वो बिल्कुल अनाही की तरह होनी चाहिए, ताकि अनाही के सारे सवालों का जवाब दे पाए। जैसे वो अपनी सास की साइड लेती है, उसे भी माधवी भाभी की साइड लेनी चाहिए। पर पता नहीं विदेशी हुई तो यहाँ की भाषा भी समझ पाएगी या नहीं, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है उसकी भी। रितेश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम चिंता करने के सिवाय कुछ और कर भी नहीं सकती हो, तो थोड़ी देर शांति से बैठो और हो सके तो भाभी को संभालो, उनका बीपी बढ़ा हुआ है, उन्हें पानी पिलाओ। यहाँ मेरे पास चिपक कर क्यों बैठी हो। राधिका ने मुंह बनाया और फिर उठकर माधवी के पास चली गई। वहीं दूसरी तरफ अनाही ने रूहान को किचन में ले जाकर अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखते हुए कहा, बताइए क्या बात करनी है आपको मुझसे, कितनी देर से आप मेरे पीछे पीछे घूम रहे हैं। रूहान धीमे कदमों से उसके करीब बढ़ते हुए बोला, नहीं मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी थी। अनाही उसके ये बढ़ते कदम देखकर अपनी धड़कते दिल को संभालते हुए मुश्किल से बोली, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं रूहान जी। अनाही ने अपने मन ही मन कहा, क्या ये मेरी सुबह वाली करतूत का नतीजा है, हे भगवान। इतना बोलकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं रूहान उसके पीछे गया और उसकी पीठ से बाल हटाकर सामने की तरफ करते हुए उसके ब्लाउज की डोरी को बांधते हुए धीरे से उसके कान में बोला, ये डोरी खुल गई थी, वैसे आपके लंबे बालों में दिख नहीं रही थी, पर फिर भी मुझे लगा इसे बांध देना चाहिए। इतना बोलकर वो झट से अनाही से दूर हो गया। अनाही के चेहरे पर पसीने की बूंदें आ गई थीं। उसे अब भी अपनी गर्दन पर रूहान की उन गर्म सांसों का एहसास हो रहा था। उसने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, ओह अच्छा, मैं तो डर ही गई थी। रूहान ने आंखें छोटी करते हुए कहा, कैसे डर गई थी आप, ऐसा तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। अब अनाही कैसे बताए कि वो क्या सोच रही थी। उसने अपने चेहरे पर आते बालों को कान के पीछे करते हुए हल्के से मुस्कुरा कर कहा, थैंक यू, आप मुझे बहुत ज्यादा नोटिस करने लगे हैं। वैसे मुझे लगता है बाहर गाड़ी आकर रुकी है, हमें नई बहू का वेलकम करना चाहिए। रूहान नाम अनाही के माथे पर चिपकी बिंदी को सही से उसके माथे पर लगाते हुए धीरे से कहा, हाँ चलिए। वहीं बाहर दरवाजे पर माधवी, जिग्नेश, रितेश, राधिका, निवेदिता और वेहा पहले से खड़ी थीं। वेदांत गाड़ी की ड्राइविंग सीट से उतरा और पिछली सीट से अनंत और राव्या। राव्या के सर पर पट्टी बंधी हुई थी और अनंत ने उसे हाथ पकड़कर गाड़ी से बाहर निकाला था। वे तीनों धीमे कदमों से चलकर दरवाजे के सामने आए। तभी अनाही ने पीछे से माधवी के हाथों में एक आरती की थाल देते हुए कहा, नई बहू को बिना स्वागत के घर के अंदर बुलाना अपशगुन होता है, ये लीजिए आप इनका वेलकम करिए। रूहान ने अपने हाथ में एक चावलों से भरा लोटा पकड़ रखा था, उसने भी वह दरवाजे की दहलीज पर रख दिया। राव्या का दिल बेहद घबरा रहा था। पूरे निमानी परिवार को अपने सामने देखकर सबसे ज्यादा डर उसे फिलहाल माधवी से लग रहा था, जो उसे ऐसे घूर रही थी जैसे अभी आंखों से ही जला कर रख देगी। वहीं विहा ने मुस्कुराते हुए राव्या को कम्फर्टेबल करने के लिए कहा, तुम ऐसे घबराओ मत, ये टीवी सीरियल वाली सास नहीं है, तुम्हें परेशान नहीं करेगी, और तुम्हारे पास तो मेरे जैसी जेठानी है, तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उसकी ये बात सुनकर बाकी सबको हंसी आ गई। तो वहीं माधवी ने गुस्से से कहा, अनंत तुमने इतना बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार भी अपनी माँ से शेयर करना जरूरी नहीं समझा। उनकी ये बात सुनकर राव्या ने अपना निकला होंठ काटते हुए तिरछी नजरों से अनंत को देखा। उसके पैर कुछ इस कदर कांप रहे थे जैसे वो कुछ ही पल में वहीं गिर पड़ेगी। अनंत ने राव्या का हाथ छोड़ और आगे बढ़ते हुए माधवी को गले लगाकर कहा, आप तो मेरी अच्छी मामा हो, मुझे पता है आप मेरे फैसले को इनकार कभी नहीं कर सकते हैं। मैं मानता हूँ इसमें मेरी गलती है कि मैं आपको पहले नहीं बताया, पर अब बता दिया है, प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। माधवी ने अपने बेटे की जिद के आगे हार मानते हुए गहरी सांस लेकर कहा, ठीक ठीक है, अब ज्यादा चिपको मत। सुनकर अनंत उनसे दूर हुआ और फिर हल्के से उनके गाल को चूमते हुए बोला, आप दुनिया की बेस्ट मामा हो जो अपने बेटे के लिए सब कुछ एक्सेप्ट कर लेती हो। अनंत के मुंह से ये सुनकर माधवी का दिल खुश हो चुका था। वो मुस्कुराते हुए आरती की थाली से दोनों का स्वागत करने लगी। उसके बाद श्रव्या ने दाएं पैर से उसे चावल से भरे कलश को पर से गिराया और फिर माधवी ने सबको साइड करते हुए उन दोनों को अंदर आने की जगह दी। पूरा घर देखकर राव्या की आंखें बड़ी हो चुकी थीं। ये घर बहुत ज्यादा रॉयल वाइट दे रहा था। निवेदिता ने अनाही से कहा, चलो बेटा केक कटिंग करवाते हैं। अनाही ने मुस्कुराकर आगे कदम बढ़ाए और टेबल पर रख केक पर एक मोमबत्ती जला दी। माधवी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सब हमने तुम्हारा वेलकम करने के लिए किया था, पर चलो अच्छा है तुम्हारी पत्नी का भी वेलकम हो गया। केक कट करो, उसके बाद सब मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। ऑलरेडी लेट हो चुका है, लग रहा है आज खाना खाते खाते ही 10 बज जाएंगे। थोड़ी देर बाद केक कटिंग का प्रोग्राम भी हो चुका था। सब लोगों ने एक साथ बैठकर खाना खाया, जिसके बाद अनंत राव्या का हाथ पकड़े उसे अपने कमरे में ले गया। बाकी सब भी इस अजीब सी घटना को हजम करने के लिए थोड़ा बहुत रेस्ट करना चाहते थे, इसलिए वो भी अपने कमरों में चले गए। राधिका ने कमरे में जाते ही रितेश का हाथ पकड़ते हुए कहा, अगर हमारे पार्थ ने भी ऐसा कुछ कर दिया तो हम क्या करेंगे? मैं तो कहती हूँ उसे भी जल्द ही वापस इंडिया बुला लो, इससे पहले कि वो भी अपने साथ किसी लड़की को लेकर आए। ये तो अच्छा है अनंत ने किसी इंडियन से शादी की है, किसी फॉरेनर से नहीं, वरना मैं तो बस इसी बात से डर रही थी कहीं वो फॉरेनर न निकले। रितेश ने अपने बेटे को याद करते हुए कहा, मुझे नहीं लगता उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी बनेगी, कितना गुस्सैल है वो, उसे तो लड़कियों से बात भी नहीं करना आता। उसकी बात सुनकर राधिका ने अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहा, ये आप पहले रूहान के लिए भी कहते थे कि रूहान को कोई लड़की पसंद आ ही नहीं सकती है, पर अभी हाल देखा है रूहान का, जितना अपनी बीवी के पीछे पागल है उतना तो आज से पहले मैंने किसी को नहीं देखा है। तो मैं इस बात पर तो बिल्कुल यकीन नहीं करती हूँ कि जिसने कभी लड़कियों से बात ना की हो वो घर के बाहर लव मैरिज नहीं करके आ सकता या फिर लड़की के पीछे पागल नहीं हो सकता। वही वेदांत भी कमरे में जाते ही सोफे पर लेटते हुए बोला, टोमेटो आज तो मेरा सर इतना भयंकर दर्द कर रहा है ना, क्या बताऊँ, मैंने सोचा नहीं था सुबह सुबह इतना ज्यादा दिमाग खराब होगा मेरा।
ये सुनकर विहा ने आंखें छोटी करते हुए कहा, ये कैसी बेवकूफों जैसी बातें कर रहे हो आप? घर में नई बहू आई है, क्या आप भी खुश नहीं हो कि अनंत भैया ने शादी कर ली? मैं तो बहुत खुश हूँ, पता नहीं क्यों आप लोगों का सरदर्द हो रहा है। ताई जी भी ऐसे मुंह बना रही थीं जैसे घर में नया सदस्य आने की बजाय रुखसत हुआ हो। ऐसा भी भला कोई करता है किसी के आने पर? उस बिचारी को कितना बुरा लग रहा होगा। वेदांत मन ही मन सोच रहा था कि उसे विहा को सारी सच्चाई बतानी चाहिए या नहीं। क्या वो राव्या को गलत समझेगी या फिर अनंत को?